हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत से प्रार्थना है महान भगवान के, भागवत पुरुषों के, जिनका श्रवण हम पहले स्कंद के अंतर्गत नवे अध्याय का भीष्म पितामह एक महाजन, 12 महाजनों में एक महाजन है, वो भगवान श्री कृष्ण को अंत समय सरसैया के ऊपर कुरुक्षेत्र के रणभूमि में सोए हुए विश्व के सारे महान ऋषियों की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण साक्षात जहाँ नारद जी और व्यास देव और परशुराम आदि अन्य जो भी भगवान के ऋषिगण हैं और पांडवों की उपस्थिति में ये प्रार्थना कर रहे हैं, उसका दूसरा श्लोक प्रार्थना का 33वां श्लोक कल पढ़ रहे थे। त्रिभुवन कमनम तमालवरणम रविकर गौरवरंबरम दधाने वपुवल्कुलावृतानाभजं विजय सखे रतियस्तुमेऽनवद्या। विजय सखे, अर्जुन के सखा, आप में मेरी रति, मेरा प्रेम आप में हो और किसी में नहीं हो। अनविद्या का मतलब और मुझे कोई मेरी इच्छा नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। कैसा है विजय का सखा? त्रिभुवन कमनम, तीनों लोकों में सब जिसकी कामना करते हैं, जो सबके लिए वांछित है, सब इच्छा करते हैं जिसको पाने की, वो सुंदर श्याम वर्ण के हैं। उनका रूप तमाल वर्ण का है, श्याम सुंदर रूप में है और उनका पीला पीतांबर सूर्य के किरणों की तरह झलमला रहा है, चमक रहा है स्वर्ण वर्ण का। और उनका अद्भुत विग्रह, मुख कमल उनका चंदन से लेपित और घुंघराले बालों से चार ओर से घिरा हुआ है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण में जो युद्ध भूमि में मैंने पार्थ सारथी के रूप में देखा था, उसमें मेरी उसके प्रति मेरे हृदय में प्रेम का उत्पन्न हो और उसको भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन का सखा से संबोधन कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी इनके तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से कृपा करके जब धरती के ऊपर अवतार लेते हैं तो उस समय भगवान इतने आकर्षक, इतने सुंदर के सभी तीनों लोकों में उनकी कामना करते हैं, उनके दर्शन करने की उनको चाहते हैं। कहते तीनों लोकों में श्री कृष्ण के समान परम सुंदर कोई और नहीं है, इसलिए ये समझना चाहिए कि उनका जो दिव्य विग्रह है, जो उनका स्वरूप है, वो संसारी हाड़ मांस का नहीं है, जिसके अंदर कोई विकृति हो जाएगी, वो नित नवीन रहता है और नव यौवन रहता है। और अर्जुन को यहाँ विजय कहा गया है और उसका सखा कृष्ण है, तो अर्जुन को विजय इसलिए कहा गया है और भगवान भगवान को उनका सखा कहा गया है। भीष्म पितामह है ये जानते हैं, कि उस विजय सखा के सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के दिव्य रथ के ऊपर बैठे थे, तो उनका जब मैं बाण चला रहा था कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, तो उनके उस सुंदर रूप का और वेश का वेशभूषा का सुमरण आ रहा है कि किस प्रकार वो पार्थ सारथी बैठे हुए थे, उनकी याद आ गई अर्जुन, और विशेष रूप से ये दर्शन उस समय का उनको याद आ रहा है जिस समय भीष्म और अर्जुन के बीच में भीषण युद्ध हो रहा है, और उस युद्ध में कृष्ण है अर्जुन के सारथी, भीष्म है विपक्ष में, उसके विपक्ष में है, शत्रुओं की सेना का सेनापति है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में कृष्ण की सुंदरता का महिमा गा के वर्णन कर रहे हैं। कितना भाग्यशाली अर्जुन है जिसको इतना त्रिभुवन कमनम सुंदर श्री कृष्ण सारथी के रूप में मिला है। यहां भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को विजय सखा कह रहे हैं। भगवान को जब भगवान के किसी बहुत प्रिय भक्त के संबंध से संबोधित किया जाता है, बुलाया जाता है, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। जैसे विजय सखा है मित्रता के भाव में, जैसे गोपीजन वल्लभ है, जैसे यशोदा नंदन है, नंदन नंदन है, कुछ भगवान के नाम हैं वो प्रथम एक एक नाम है संसार में, कुछ जैसे दीन बंधु नाम है, जगन्नाथ नाम है, ये सेकेंडरी नाम है, परंतु जो आदि भगवान के गोविंद है, गोपीनाथ है, पार्थ सारथी है, ये जो भक्तों के संबंध के नाम है ये बहुत मधुर है। इनसे भगवान और भक्तों के जो संबंध है उनका पता लगता है। भीष्म पितामह ने वो भगवान का रूप जो उन्होंने वीर रस में कृष्ण के सारथी के रूप में देखा था, वो उनके हृदय में इतना छप गया है, इतना अंकित हो गया है, इतना पक्का हो गया है कि उसको भूल नहीं पा रहे हैं। और कौन से रस का भीष्म पितामह रस आस्वादन कर रहे हैं? वीर रस का, भगवान श्री कृष्ण के वीर रस का, जैसे गोपियां माधुर्य रस का रस आस्वादन करती हैं, सखा सखा रस का, तो वीर रस भी सात रसों में एक रस है। दास रस तो भीष्म पितामह का है स्थाई भाव, उस दास रस में वीर रस उस दास रस को और ज्यादा मधुर बना रहा है। तो भगवान के साथ जो हमारे संबंध होते हैं वो किसी भी एक रस में हो सकते हैं, जो पांच रस हैं, और उससे जो भक्त होते हैं उनको बड़ा अद्भुत आनंद आता है उन रसों के अंतर्गत, और भगवान का संबंध जो है मधुर हो जाता है, जो भी संबंध हो। अब श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, कम बुद्धि वाले लोग वो भगवान के जो गोपियों के साथ मधुर रस है उसके ऊपर सीधा ही कूद कर उसका वर्णन करते हैं, जबकि उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं है। गोपियों के साथ भगवान ब्रज धाम में क्या लीला करते हैं उसका वर्णन करते हैं, ये तो सस्ती कम बुद्धि वाले लोग हैं, वो उसका क्या अनुभूति कर सकते हैं? उसकी अनुभूति वही कर सकते हैं जिसको भौतिक भोग की वासना तो रहती ही नहीं है। तो वो तो ऐसे रस का वर्णन करके कम बुद्धि का अपना परिचय देते हैं। ये सारे रस, जिसको जो रस है वो रस अपना ही आनंद देगा और उसी रस में उन्नति करनी चाहिए। कोई भी पांचों रसों में किसी का कोई भी रस हो सकता है, और एक रस दूसरे से अधिक मिठास वाला है, हर रस में उससे पहले वाला रस रहता ही है। जैसे शांत रस है तो जो दास्य रस में उसमें शांत रस है, दास्य उसमें और मिल गया, दास्य वाला है तो सखा वाला है तो उसमें दास्य रस है सखा और मिल गया है। तो ऐसे माधुर्य रस में सारे रस मिले होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब रसों का रसास्वादन नहीं किया जा सकता है, सभी कर सकते हैं। पांचों रस भगवान को प्रिय हैं। विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु ने चार रसों को, शांत रसों में आदान प्रदान नहीं हो सकता है, वृंदावन की गाय है शांत रस में है, ब्रजभूमि है, भगवान की लाकुटी है, बांसुरी है, ये शांत रस में है। परंतु चार रसों को महाप्रभु ने स्वीकार किया है। यहां बहुत बड़े सेनापति एक महान भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के वीर रस का रसास्वादन कर रहे हैं। अब हम आगे के श्लोक में पढ़ रहे हैं, उस समय जो भीष्म पितामह को भगवान का रूप, जो सुंदरता, वीर रस की उनको उनके हृदय के ऊपर अंकित है, छपी हुई है, उसकी याद आती है। कहते हैं, युधि त्वगर जो विधुमरा विश्व कचलोले तशरम वारी अलंकृतास्य अलंकृतास्य मम निषेत शरैर विद्यमाना विविध्यमाना त्वची विलसत कवचस्तु कृष्ण आत्मा। यह आत्मा का अर्थ है मेरा मन, मेरा मन उस कृष्ण में आविष्ट हो जाए, वो कृष्ण मेरे मन में सदा बसा रहे। कौन सा कृष्ण? युधि तुरग, युधि का मतलब रणभूमि में, तुरग का मतलब घोड़े, रजो विधुमर, रजो का मतलब घोड़ों के टाप से उड़ी हुई धूली, विधुमर वो धूली जब भगवान के घुंघराले केसों के ऊपर लगी तो वो केस धुंधले हो गए। विधुमर, धूम कहते धुएं को, तो धुंधले हो गए केस। विश्वक कच्चुलोलित शर्मवारी, कच्च कहते हैं बालों को भगवान के, और भगवान ने बहुत परिश्रम किया घोड़ों को हांक कर अर्जुन की रक्षा करने के लिए, तो परिश्रम से क्या हुआ, पसीना हुआ, और पसीने के ऊपर वह धूली जम गई, और वो भगवान की सुंदरता बढ़ा के अलंकृतास्या, वो भगवान का अलंकार बन गई। गोपियां भगवान जब शाम को गैया चरा के आते हैं तो गौ धूली भगवान के घुंघराले बालों पे गायों को चराने के परिश्रम से उसको जो धुंधले बाल कर देती है, उनका दर्शन करने के लिए शाम को अपने घर के कटहरे के ऊपर खड़ी होकर कृष्ण का दर्शन करने की प्रतीक्षा करती है। वहां गोधूली है, वो है माधुर्य रस वालों का भगवान का स्वरूप। और यहां है युधि तुर्ग रजोवारी, यहां युद्ध भूमि में घोड़ों के टापों से उड़ी हुई धूल, श्री कृष्ण के घुंघरालू बाल जो पसीने से, कृष्ण सपार्थ सारथी के कार्य करते हुए पसीने से जो बाल उनके भीगे थे, उनके ऊपर धूल जमी हुई थी। और उसके साथ और क्या था? मम निषित शरई, मम मेरे, भीष्म कहते मेरे तीखे तीखे निषित शरीर बाण, मेरे तीखे बाण वो मैंने उनके ऊपर मारे। और विभिद्यमाना, उनसे बींधे गए, विभिद्यमाना का मतलब उनके बींधे गए क्या, त्वची भगवान का चमड़ी, विलसत कवच, और जो उनका जो कवच था, जो छाती के ऊपर बांधा हुआ कवच था, उसके ऊपर मैंने तीर मारे, वो लटक रहा था और उसके अंदर से छोटे छोटे चमड़ी पे मेरे तीरों के घाव लगे। ऐसा श्री कृष्ण वीर रस में जो मेरे सामने अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे हुए थे, उसमें मेरा मन आविष्ट हो जाए, ये भीष्म पितामह का पार्थ सारथी का वीर रस का ध्यान है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सखा होने के नाते सारथी बने थे, उनके घुंघरालू बाल घोड़ों की टाप से उड़ी हुई धूली से पसीने परिश्रम के पसीने से जो लहरा रहे थे, बड़ा परिश्रम किया था, उनके मुख के ऊपर पसीने की बूंदें थी और ये बड़ी सुंदरता उसके साथ मेरे तीखे बाणों से उनके कवच को जो मैंने छिन्न भिन्न करके त्वचा के ऊपर प्रहार किया था, उसका भगवान ने आनंद लिया, ऐसे भगवान में मेरा मन लगे। मेरा मन केंद्रित हो जाए श्री कृष्ण के ऊपर, मेरे मन में कृष्ण छा जाएं, जम अंदर प्रकट हो जाएं, जिनका मुख चारों ओर से घुंघराले धूली से धूषित बाल जो घोड़ों के टापों से उड़ी और परिश्रम की बिंदुएं पसीने के उनके मुख के ऊपर, मुख कमल के ऊपर, और अर्जुन की रक्षा के लिए बड़ा परिश्रम कर रहे थे और मेरे तीखे बाणों से उनका कवच टूटा हुआ था। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान के मुख का वर्णन इससे पहले श्लोक में किया था, रवि कर गौरव अंबरम ददान ददाने, और सुंदर वस्त्र के साथ बालों का वर्णन किया था, सुंदर मुख अंबुज बालों से और चंदन से सुशोभित है। तो उसी मुख का आगे भीष्म पितामह जो मधुरता मुख में है, सुंदरता जो मुख में है, उस भगवान के मधुर मुख का वर्णन करते हुए कहते हैं, पुनः उनका सुंदर मुख सुशोभित हो रहा था, अलंकृत हो रहा था, किससे? उनके घुंघरालू बाल फहरा रहे थे जब बड़े तीव्र गति से रथ को इधर से उधर चला रहे थे और उनके बालों के ऊपर रथों के घोड़ों के टापों से, घोड़ों के चलने से जो धूल उड़ी थी उसने उनके बालों के ऊपर धुंधला रंग कर दिया था। कितने सुंदर है भगवान, सुंदर किम सुंदरम ना न्याय, सुंदर स्वयं है, उसके ऊपर कुछ भी करो सुंदर लगेगा। उनके मुख के ऊपर पसीने के छोटे छोटे बिंदु पड़े थे, इसका मतलब कृष्ण बहुत बड़ा परिश्रम कर रहे थे अर्जुन की रक्षा के लिए। इतना अर्जुन से स्नेह और प्रेम था कि उसकी रक्षा के लिए बहुत परिश्रम कर रहे थे। भीष्म पितामह कहते हैं, मैंने उनकी चमड़ी को मेरे तीखे बाणों से छलनी कर दिया था। और यहां जो भाव लिखते हैं प्रभुपाद जी ने, तात्पर्य में लिखा है कि रसिक आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि वो जो मेरे तीखे बाण हैं, वो जैसे एक सेवक अपने स्वामी को फूल अर्पण करता है, तो फूल किसी को लगते नहीं है, फूल हम फेंकते हैं दूर से भगवान के ऊपर, तो वो प्रेम से फूल फेंकते हैं, वो भगवान को लगते नहीं है। या जैसे कोई प्रेमी का अपने प्रेमी को अति गाढ़ प्रेम के कारण चाहे नाखून से या दांत से काटती है, तो वो काटना उसका अति प्रेम के कारण होता है, शत्रुता के कारण नहीं होता है, और प्रेमी उसको शत्रु नहीं समझता है। अगर शत्रु समझते तो श्री कृष्ण इस वक्त अंत समय भीष्म के सामने क्यों आते? और शत्रु समझते तो श्री कृष्ण को भीष्म को मारने में कौन सी देर लग सकती थी। तो यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ये प्रेम, ये भक्त और भगवान के प्रेम का परिचय है। ये प्रेमी का प्रेमी के साथ जैसे प्रेम करती है, ऐसे भक्त भगवान के साथ प्रेम कर रहा है। तो ये जो जख्म थे भगवान ने, उनसे भगवान सुख ले रहा था। मैं प्रेम रहित नहीं था, जब भगवान के ऊपर बाण चला रहा था तब भी मेरे अंदर वही प्रेम था, वो मेरे स्वामी थे, लेकिन वो ऐसे प्रसन्न हो रहे थे तो मैं बाण चला रहा था। फिर चक्रवर्ती पाद लिखते, कोई कृष्ण की चमड़ी हमारे जैसी चमड़ी तो नहीं है जिसको बाणों से छलनी किया जा सके। भगवान ने तो कवच पहना हुआ था, वो कवच चमक रहा था, ऐसे लिखा है। इसका अर्थ है कि कवच के ऊपर बाण लग रहे थे और ऐसे लग रहा था कवच छिन्न भिन्न लग रहा था। और भगवान की चमड़ी हमारे जैसी नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान तो परम सत है, सच्चित आनंद विग्रह है, वो हमेशा दिव्य है। और पांच प्रकार के रसों से भगवान की सेवा भक्त करते हैं, शांत रस, दास्य रस, सखा रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। और जो जो उनकी वास्तविक भगवान से प्रेम है उसी को प्रकट करते हैं। भीष्म पितामह भगवान का एक महान भक्त है दास्य भाव का। यह प्रभुपाद जी भीष्म पितामह के भाव को प्रकाशित करते हुए कहते हैं दास्य भाव का भक्त है। इसलिए वो जो तीखे तीखे बाण भीष्म पितामह की ओर मार रहे थे, जो बाण छोड़ रहे थे, वो ऐसे जैसे एक भक्त अपने प्रेमी के चरणों में फूल अर्पण कर रहा हूं, ऐसे लग रहा था गुलाब के फूल अर्पण कर रहा हूं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे लगता है कि भीष्म पितामह पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने ऐसे सुंदर मधुर अंत समय मुझे दर्शन दे के मेरे ऊपर कृपा करने वाले के ऊपर ऐसे मैंने बाण क्यों चलाए। परंतु वो ये भी जानते हैं कि भगवान का ये विग्रह मेरे बाणों से कभी क्षत कभी दुखी नहीं होता है, उसके अंदर दर्द नहीं होता है, वो तो चिन्मय है, वो तो पर पूर्ण ही सच्चित आनंद स्वरूप है। जैसी हमारी आत्मा है, ऐसे जैसे आत्मा को नहीं काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, भिगाया नहीं जा सकता, ऐसे भगवान तो का पूरा शरीर ही उसी चीज का बना हुआ है। फिर भी वो जानते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान और भगवान का शरीर दोनों चिन्मय है। और यही बात लिखते हैं कि आत्मा का कैसे भी काटा नहीं, न शस्त्राण नैनम दहति शा पावक, नैनम चंदनती शस्त्राणी नैनम दहति पावक, न चैनम क्ले दिन आपो न शोचति मारुत। ये गीता के श्लोक हैं। स्कंद पुराण में भी ऐसे आत्मा के लिए लिखा है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। भगवान साक्षात धरती के ऊपर अवतार लेके आते हैं, वैसे अवतार सारे विष्णु से आते हैं, यहां तो साक्षात श्री कृष्ण है। तो वो ऐसी लीलाएं करते हैं, जो असुर होते हैं वो समझते हैं कि भगवान को हम मार लेंगे। हाँ, भगवान जी कर्ष चाहता था कि जन्म से ही भगवान को मार दूंगा, हिरण्यकशिपु समझ रहा था भगवान, रावण समझता राम को मार लूंगा, हिरण्यकशिपु समझ रहा था विष्णु को मार लूंगा। यस, असुर ऐसे समझते हैं, लेकिन भगवान कैसे मर नहीं सकता है। जैसे आत्मा ही समाप्त नहीं हो सकती है, तो आत्माओं का स्वामी परम आत्मा कैसे समाप्त हो सकता है। लेकिन फिर भी ये असुरों को भ्रमित करने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। इसलिए भीष्म पितामह के जो तीखे बाण हैं, जो कृष्ण की ओर वो मार रहे थे, ये अभक्तों को भले ऐसे लगे कि भगवान को तीखे बाण भीष्म मार रहा था, परंतु जो मुक्त है वो कभी भी ऐसे मोहित नहीं होते हैं कि ये तो भगवान रस आस्वादन कर रहा था वीर रस का। पहले पश्चाताप करके फिर भीष्म पितामह भगवान की कृपा का स्मरण कर रहे हैं, कितना बड़ा दयालु है, इतने मेरे तीखे बाणों के कारण भी अपने प्रेमी भक्त अर्जुन को छोड़ा नहीं, उसका साथ छोड़ा नहीं, अकेला कभी नहीं छोड़ा। इतने मेरे तीखे बाणों से उसको मैंने पीड़ा पहुंचाई, लेकिन उसने अर्जुन का परित्याग नहीं किया, वो रथ के ऊपर डटे रहे और इतने बाण मेरे लगने के बाद भी मेरे ऊपर कुपित नहीं हुए, अंत समय मुझे दर्शन देने के लिए, कृपा करने के लिए यहां कुरुक्षेत्र में पधारे हैं। दया भी कितनी है, कितने बड़े दयालु हैं। भीष्म देव का पश्चाताप और भगवान की कृपा यहां बड़ी अद्भुत और अतुलनीय है। भीष्म पितामह पश्चाताप कर रहे हैं और भगवान कृपा कर रहे हैं, ये दोनों के जो भाव है जिनका यहां चित्रण हो रहा है ये यूनिक है, ये अतुलनीय है, अनुपम है। चक्रवर्ती पाद का प्रभुपाद जी भाव लिखते हैं कि प्रेमिका और प्रेमी के बीच में अति प्रेम के कारण चोट भी लग जाए नाखून या दांत की तो बुरा नहीं माना जाता है, वो प्रेम क्या निशानी होती है। ऐसे भगवान के श्री विग्रह के ऊपर भीष्म के बाण प्रेम की निशानी। तो ये वीर रस का रसास्वादन हो रहा है, भगवान बड़े प्रसन्न हुए भीष्म पितामह के इन वीर रस के बाणों के छेदन से। और विद्यमान, विविध्यमान का मतलब है सामान्य चमड़ी नहीं है भगवान की जिसके अंदर कोई छेद हो जाएगा, हमारी चमड़ी भगवान की चमड़ी से अलग है, न तो उसके ऊपर कोई खून निकला, नहीं कोई रगड़ आई। ये अद्भुत आनंद है वीर रस का सेनकों के बीच में, ये भौतिक चीजें नहीं है। इस संसार में सब चीजें जो है प्रतिबिंब रूप में, वहां असली रूप में है, यहां सब चीजें भौतिक स्तर के ऊपर है, तो वहां ये एक आनंद भी अद्भुत है। तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के बाणों के घावों को बड़े प्रेम का पुरस्कार समझ के प्रसन्न हो गए, और यही क्षत्रिय के लिए वीर रस है। अब भीष्म पितामह को कृष्ण की भक्त वत्सलता और विश्व कल्याण, कृष्ण ने जो किया कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, उसका स्मृति आ रही है। कह रहे सपति सखी वचे निष्माया मध्य निज परयोर बलयो रथम निवेशया सितवती पर सैनिका युवक्षणा हृतवती पार्थ सखे रती ममासो ममास्तो। सपदी, सपदी कहते हैं युद्ध भूमि को, सखी वचो अपने मित्र का वचन, इसका मतलब अर्जुन का आदेश, निष्मय सुनकर मध्य दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लाए, निज परयोर अपनी अर्जुन की सेना पांडवों की सेना और परयोर दुर्योधन की सेना दोनों के बीच में रथ लाए, बलयो रथम निवेशया दोनों के सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किया। क्या किया? स्थितवती पर सैनिक आयु रक्षणा, पर सैनिक आयु, दुर्योधन की सेना के ऊपर भगवान ने एक नजर डाली और उससे कर क्या लिया, उनकी आयु को हरण कर लिया, उनके प्रारब्ध कर्म समाप्त कर दिए। ऐसे दयालु श्री कृष्ण, भक्त वत्सल श्री कृष्ण जो अर्जुन का सखा है, पार्थ का सखा है, उसमें मेरा प्रेम हो, उससे मेरा प्रेम हो। तो यहां अपने प्रिय भक्त अर्जुन के आदेश को पालन करते हुए आज्ञाकारी बन के श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दोनों सेनाओं के बीच में, अर्जुन और दुर्योधन की सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किया। केवल खड़ा नहीं किया, लेकिन जब वो इशारे से बता रहे थे देखो सामने भीष्म है, वो द्रोण है, वो उसके नजर के इशारे से उसने कौरव सेना की आयु को हर लिया। दया दृष्टि थी उनके ऊपर, उनके प्रारब्ध कर्म हर लिए, आगे आएगा उनको स्वरूप की प्राप्ति हो गई, वो मुक्त हो गए। मेरा मन ऐसे कृष्ण पार्थ सखा में प्रेम पूर्वक सदा निमग्न रहे। चक्रवर्ती बात कहते हैं मेरा प्रेम अर्जुन सखा में हो, पार्थ सखा में मेरा प्रेम हो, जिसने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके अर्जुन की आज्ञा का पालन किया और दृष्टि डाल के इशारा करते हुए प्रारब्ध कर्म ही दुर्योधन की सेना के हर लिए। तो पहले तो गीता का ये श्लोक याद आ रहा है, सैन्योर व्योर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत यावादेता निरीक्ष्य अहम योधो कामान अवस्थित। अच्युत को ये पहला अर्जुन ने आदेश दिया है और दोनों सेनाओं के बीच में भगवान ने रथ खड़ा किया। फिर क्या किया? नजर से इशारा किया। क्या बोला अर्जुन को? कहा देखो सामने भीषम है, वो द्रोण है, भीषम प्रोण द्रोण प्रमुक्त है सर्वेशम च मरीक्षताम वाच पार्थ पश्यताम कुरुनिति। ये सब आपके कुरुसेना के कुरुकुल के सामने खड़े हैं, देख लो। उनके जीवन को ले लिया, जीवन हर कर लिया। तो यहां जीवन हरण करने का अर्थ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं उनके प्रारब्ध कर्म। इसका मतलब अब वो इन कर्मों के कारण दूसरे जन्म में नहीं जाएंगे, अब कर्म सब समाप्त, अब ये वापस भगवान इनको मुक्ति देंगे, वो मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। क्योंकि आगे आएगा 39 श्लोक में यम इह निरीक्षय हता गता स्वरूपम, भगवान की दृष्टि से उनको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई। तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहले तो ये लिखते हैं वही भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त और प्रेमी मित्र अर्जुन की आज्ञा का पालन किया, दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा किया। भगवान ने भगवान होते हुए भी अपने भक्त के आदेश का पालन किया। जैसे सामान्य किसी ड्राइवर को कहा जाए कि मेरी गाड़ी वहां ले चलो, और फिर उन्होंने महारथी जो सामने खड़ा था उनका नाम लेके बताया देखो भीषम द्रोण। प्रभुपाद जी कहते भगवान परम पुरुष भगवान है, वो न तो किसी की आज्ञा पालन करने के लिए बंधे हुए हैं और न ही किसी के अधीन है। लॉर्ड बींग द सुप्रीम बींग इज नेवर द ऑर्डर सप्लायर और ऑर्डर कैरियर। हम ऐसे करो भगवान, वो भी भगवान बंधे हुए नहीं है, हमारी आज्ञा का पालन करें या जो हम चाहें वो हमको दें, उनसे ऊपर है। परंतु अहितु की कृपा करके अपने भक्तों की आज्ञा का पालन करते हैं। और ऐसे ऐसे कभी बैठे होते हैं जैसे आज्ञाकारी सेवक हो और स्वामी की आज्ञा पालन करना चाहते हो, ऐसे भगवान सेवक बन के खड़े हो जाते हैं। भगवान को जब भगवान प्रतीक्षा करते हैं कि भक्त मुझे आज्ञा कब करेगा, भक्त वांछा पूरी करे, यही कृष्ण कृत्य, और कोई भगवान को काम नहीं है, एक ही काम है, भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। भगवान भक्त कोई मांगता ही नहीं है तो भगवान इंतजार करता रहता है, उनको बड़ा अच्छा लगता है। कैसे उदाहरण देते हैं, जैसे पिता अपने पुत्र की कोई इच्छा पूरी करने में प्रसन्न होते हैं तो भगवान पिता है और हम जीव उनके पुत्र हैं, जब कोई आज्ञा करता है प्रेम से तो भगवान पूरी करने में बड़े प्रसन्न होते हैं। और भीष्म पितामह ऐसे भगवान के प्रेम के आदान प्रदान भक्तों के साथ जो होता है उससे अवगत थे, इसलिए यहां अर्जुन पार्थ सखा कह के संबोधन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं श्री कृष्ण ने दुर्योधन की सेना के सैनिकों की आयु को कृपा दृष्टि से हरण कर लिया और वो सब मुक्त हो गए, मृत्यु के समय वो मुक्त हो गए। अब भगवान को कौन कहेगा कि तुम अर्जुन के पक्ष में थे, बैठे थे अर्जुन के सारथी बनकर और मुक्ति देगी दे दी दुर्योधन के सैनिकों को, तो अधिक तो लाभ मिला दुर्योधन के सैनिकों को। प्रभुपाद ने शब्द क्या लिखा है, ही वॉज पार्शल टू द काज ऑफ अर्जुन, फैक्चुअली ही वॉज मर्सीफुल टू ऑपोजिट पार्टी। सही माना में वास्तव में देखा है तो उनके ऊपर बड़ी कृपा की दुर्योधन के सैनिकों के ऊपर, क्योंकि उनको मुक्ति मिल गई। अगर घर में बैठे हुए मरते तो पता नहीं कितने जोनियों में भटकना पड़ता। भगवान को अंत समय मिल जाए, दर्शन करने को मिल जाए, ये कोई सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है, कोई उनके पुण्य उदय हुए होंगे तभी तो उनको श्री कृष्ण की उपस्थिति में प्राण त्यागने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए भगवान सबके लिए कल्याणकारी है, सबका भला करते हैं, जो कुछ करते हैं उसमें सबकी भलाई होती है। सामान्य ऐसे देखते हैं कि अर्जुन की विजय हो गई, वो भगवान का बहुत घनिष्ठ मित्र था, पर देखा जाए वास्तव में देखा जाए तो अर्जुन के शत्रु पक्ष वालों को तो मुक्ति मिल गई, एक तरफ संसार की विजय और एक तरफ संसार बंधन से मुक्ति, तो मुक्ति तो ज्यादा महान है। ऐसे हैं भगवान के दिव्य कार्य, जो इनको समझ सकता है तत्व से वो भी मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। जन्म कर्म च मे देवम एवं योवेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सुअर्जुन। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान किसी के साथ कुछ गलत अन्याय नहीं करते हैं, वो जो कुछ करते हैं उसमें सबका भला होता है। अभी उसी युद्ध भूमि में बीच में खड़े हुए रथ का ध्यान करते हुए भीष्म पितामह कह रहे हैं व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्षय स्वजनम वधाद विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिम अर्हदात्म विद्याय चरणरति परमस्य तस्य मे अस्तु। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में मेरी रति हो, मेरा प्रेम हो, मेरी भक्ति हो, परमस्य तस्य, वो परम भगवान परम पुरुष है, उसके चरणों में रति हो। कैसा है भगवान वो, व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्षय। अर्जुन को जब भगवान ने दूर खड़े हुए सामने सेना वाले स्वजनों का परिचय कराया, भीष्म द्रोण को देखो, कृपाचार्य को देखो, वो देखो सारे दुर्योधन के भाई और उनके पुत्र आदि खड़े हैं। तो ये कौन थे? ये सारे थे अर्जुन के स्वजनम वधाद, ये सब स्वजन था, इनका वध होने वाला था, ये सब इस युद्ध में भूमि में वीर गति को प्राप्त होने वाले थे। ये विचार आते ही विमुखस्य दोष बुद्ध्या, अर्जुन बेमुख हो गया, युद्ध से मुंह मोड़ लिया, दोष बुद्धि, बुद्धि में दोष आ गया। इस दोष को अर्जुन भगवत गीता में कहते हैं कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, अर्जुन की बुद्धि में दोष आ गया। उस दोष को भीष्म पितामह कहते हैं कुमतिम, वो कुमति थी, सुमति नहीं थी, वो कुमति थी। तो भगवान ने क्या किया, अर्हदात्म विद्या यश, उस वक्त भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया। आत्मविद्या, श्री कृष्ण ने अपने श्री कृष्ण को पाने की विद्या दी विश्व कल्याण के लिए। ऐसे अर्जुन की कुमति को हरने वाले, विश्व कल्याण के लिए भगवत गीता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण परम पुरुष भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो। ये भीष्म पितामह का गीता के उपदेश के समय के स्मृति है। प्रभुपाद लिखते देखने में आ रहा था कि अर्जुन की मति भ्रमित हो गई थी, कुमति मति हो गई थी, अपने स्वजनों का मुख देखकर युद्ध से ना कर रहा था। उस अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया और उस भगवान के चरणों में मेरी रति हो, चक्रवर्ती पादा में भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो, कृष्ण के चरणों में मेरा प्रेम हो, जिन्होंने दिव्य अपने विषय में भगवत गीता का ध्यान दे देकर अर्जुन की अज्ञान का नाश कर दिया। जब उन्होंने अपने स्वजनों के वध का विचार करके कुमति आ गई थी, चक्रवर्ती व्यास लिखते हैं व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्षा, इसका अर्थ है भीष्म आदि को सामने देखकर दूर अर्जुन के मन में उनको मारने के भय से कुमति आ गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
प्रभु जी आप म्यूट पे हैं।
अब म्यूट आप खोलो, नहीं खुल रहा है, म्यूट नहीं मान रहा है, आप खुल गया। हरे कृष्णा,
आवाज आ रही है,
आवाज आ गई अभी, वो क्या कर सकते हैं, ये नेट भी आज तो एक ही क्लास है आजकल, फिर भी कोई अनलिमिटेड ऐसा सिस्टम है नहीं, गांव का माहौल है। सो ये जो चक्रवर्ती पाद लिखते हैं भीष्म आदि को देख के अर्जुन के मन में जो कुमति आ गई, एवं उक्त्वा अर्जुन संख्य रथोपस्थ उपाविशत विसर्जय सशरम चापम सोम शोक संविघन मानस। ये गीता का श्लोक है अंतिम पहले अध्याय का। इस प्रकार अर्जुन ने अपना रथ नीचे रख दिया और बहुत बड़े विषाद के कारण युद्ध नहीं करूंगा ऐसे कह लिया। इसको कह रहे हैं कुमति, इसको भीष्म पितामह कुमति कह रहे हैं। ए कृष्णा, मेरा फेसबुक बंद हो गया भाई।
हरे कृष्णा चल गया तो भाग, नहीं तो सुखी।
अब जहां चक्रवर्तीपाद एक भाव दे रहे हैं कि अभी अभी भीष्म के सामने युधिष्ठिर को ले आए हैं, उसकी बुद्धि को भी हर लिया कि किसी की बात न समझ पाए और यहां भीष्म से उपदेश दिलाने, ऐसे ही अर्जुन की बुद्धि को कृष्ण ने हर लिया था क्योंकि उनको भगवत गीता देनी थी। वरना अर्जुन जो नर नारायण के साथ में अवतार है, भगवान का नित्य पार्षद है, उसके बुद्धि में कुमति कैसे आ सकती है? तो जैसे अभी युधिष्ठिर की बुद्धि को हरण करके क्या उनको मोह में डालकर किसी की बात न समझ सके, यहां तक के कृष्ण की बात भी न समझे क्योंकि भीष्म पितामह की महिमा को महत्व देना था, ऐसे ही अर्जुन को ऐसी स्थिति में डालकर भगवत गीता का अवतार करना था। और आत्मविद्या का मतलब वो विद्या जिससे कृष्ण के ऊपर मन केंद्रित हो सके। श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े राजा महाराजा युद्ध भूमि में खड़े थे, उनको अर्जुन ने देखा। और यहां प्रभुपाद जी को ऐसा विचार आ रहा है कि आधुनिक आजकल के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, ये तो ऑफिसों में एयर कंडीशन बैठे होते हैं, बेचारे सैनिक युद्ध भूमि में गोलियां खाते रहते हैं। ये जो लोकतंत्र वाला राज है, ऐसा वो राज नहीं था। वहां तो सामने आमने भीष्म भी खड़ा था, अर्जुन भी खड़ा था, युधिष्ठिर भी खड़ा था, दुर्योधन भी खड़ा था। तो वहां ऐसा युद्ध नहीं था जिसमें केवल गरीब सैनिक ही मरने के लिए चले जाएं। और उसके बाद युद्ध के लिए स्थान अलग चुना गया था जहां सामान्य नागरों को कोई क्षति न पहुंचे, और सामान्य नागरों को युद्ध के प्रति कोई चिंता भी नहीं थी कौन यह राजा बनेगा, हमको तो हमारा चौथा हिस्सा कर देना है राजा को। राजा कौन बनेगा उससे उनको ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था, वोट का चक्कर नहीं था। प्रभुपाद जी का यह लिखने का अर्थ यह है कि पुराने राजा महाराजा स्वयं युद्ध भूमि में आगे खड़े होते थे। राजा का अगर ध्वज गिर गया तो हार, राजा अगर बंदी बन गया तो हार हो गई। अब तो राजा दिखता ही नहीं है किसको, घर बैठा हुआ है। तो प्रभुपाद जी पहले तो तुलना कर रहे हैं जो युद्ध पहले हुआ करता था और जो युद्ध आज होता है। यहां तो बम फेंकते हैं एक सेना की टुकड़ी को तो गांव सारा तबाह हो जाता है, तो ये ठीक नहीं है। श्री प्रभुपाद जी एकदम सामान्य बेचारे जो नागरिक थे, जो इनोसेंट नागरिक थे, उनको युद्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वहां तो दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी और अर्जुन के हृदय में दया आ गई, प्रभुपाद जी कहते हैं, और दया के कारण अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और उस वक्त अर्जुन की बुद्धि भ्रमित हो गई। अर्जुन की बुद्धि भ्रमित नहीं हो सकती है कभी भी, क्योंकि अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान का नित्य पार्षद है। परंतु चौथे अध्याय में हम देखते हैं भगवान का मित्र है अर्जुन, तो उसकी बुद्धि कैसे भ्रमित हो सकती है। परंतु भगवान ने इस स्थिति में डाला क्योंकि भगवान को भगवत गीता का उपदेश देना था, जिस उपदेश के अंदर आत्मा और शरीर को अलग करके समझाया गया है। आत्मविद्या का अर्थ प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसको अलग करके समझाया गया है, और जिसके द्वारा सब इस गीता के उपदेश को सुनकर अपने जीवन को सफल करके भगवत धाम जा सकते हैं। आत्मविद्या दिव्य ज्ञान है, और मुख्य रूप से भगवान ने ऑल पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, benefit, for the benefit of all concerned and parts of the universe. इसका मतलब मानव मात्र के लिए. कभी हम उदाहरण देते हैं कि भगवान ने सूर्य देव को ज्ञान पहले देकर इस भगवत गीता के ज्ञान को सर्वभौमिक बना दिया, सर्वव्यापक बना दिया. सूर्य तो सबको प्रकाश देता है, किसी देश का एक का सूर्य नहीं होता, किसी जाति का सूर्य नहीं होता है, सूर्य सबको प्रकाश देता है. ऐसे भगवत गीता जो भाग्यशाली इसको पढ़ेगा उसके हृदय में प्रकाश हो जाएगा, अंधकार नाश हो जाएगा और निश्चित रूप से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ेगा. अब एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है, इसका भावार्थ कल पढ़ेंगे. भक्त की महिमा भगवान अपने से ज्यादा करते हैं. जब भगवान और भक्त के बीच में कॉम्पिटिशन होती है, स्पर्धा होती है, तब भगवान भक्त को विजयी बना के स्वयं हारते हैं, उसमें भगवान की विजय है. तो भक्त की महिमा ये दो श्लोकों में है. स्वनिगमम अपाय मता प्रतिज्ञा ऋतम अधिकर तुम अवल अप अवपुल तो रथ स्थ धृतरथ चरणो अभ्या चलद गो हरिव हम तुम इभम गतोत्रिय. स्वनिगम, निगम कहते हैं, वैसे निगम वेद को कहते हैं, और निगम कहते हैं अपने वचन को जो वेद के समान कभी लोग तोड़ते नहीं थे पहले. तो स्वनिगमम जो भगवान का वेद का जो वेद को देने वाला भगवान है, जो वेद सदा सत्य है, ऐसा सत्य संकल्प भगवान अपाय मत प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए वेद के समान अपने वचन को तोड़ दिया. रितम, मेरे वचन को सत्य किया. रितम का मतलब सच करना. अधिकृतम, मेरे को अधिक सम्मान दे दिया. क्या किया? अवपुल तो रथ स्थ, एकदम कूद के अर्जुन के रथ के सारथी की घोड़े की लगाम को छोड़ के कूदे नीचे. क्या किया? कूद कर रथ चरणों, एक रथ का टूटा हुआ पहिया उठा लिया. सुदर्शन चक्र को कहा आओ, उसने कहा भगवान आपने भक्तों की रक्षा के लिए मुझे रखा है, भक्तों के वध के लिए नहीं रखा है. ये भीष्म आपका भक्त है, आप तो लीला कर रहे हो. तो भगवान ने रथ का चरण उठा लिया, रथ का पहिया उठा लिया. अब ब्याह चल दगो, बहुत तेजी से भागे. और हरी, हरी का अर्थ है शेर. इव शेर जैसे झपकता है, किसके ऊपर? इबम, हाथी के ऊपर. छोटे बूढ़ा, बूढ़े हाथी के ऊपर कोई नौजवान शेर झपकता हो, ऐसे श्री कृष्ण अर्जुन आप मुझ भीष्म के ऊपर जब झपक रहे थे तब क्या हुआ? चला दगोर, ये पृथ्वी कांपने लगी. क्यों कांपने लगी? भगवान अपना वचन तोड़ रहे हैं, उसका भार पृथ्वी से भी सहन नहीं हुआ, पृथ्वी कांपने लगी. और आप इतने तीव्र गति में भक्त की रक्षा करने की इच्छा में थे, गत उत्तरीय, आपका जो ऊपर का ओत्री का कपड़ा था पीला पीतांबर कंधे वाला, वो नीचे धरती पे गिर गया. आपको पता भी नहीं लगा कि आपकी ओत्री गिर गई. भगवान ने कहा वो तो पृथ्वी को शांत करने के लिए. मैंने कहा चिंता मत करो, ये लीला है. तो ये श्लोक का अर्थ क्या हुआ? मेरे वचन को सत्य करने के लिए अपने वचन को तोड़ दिया. नेम बदलते देखे भगवान के प्रेम से, नेम बदल दिए, अपने वचन को तोड़ दिया, भक्त के वचन को सत्य कर दिया. सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, पांचवें सातवें स्कंद भागवत में लिखा है, अपने भक्त के वचन को सत्य करता हूं, ये मेरा प्रतिज्ञा है तो भीष्म भक्त है, उसने वचन किया था उसको सत्य करना। मेरे वचन को सत्य करने के लिए अर्जुन के रथ के सारथी के स्थान से नीचे कूदे, रथ के पहिए को हाथ में उठाए और शेर जैसे हाथी के ऊपर झपकता है ऐसे मुझे मारने के लिए आगे बढ़े तो धरती कांपने लगी। भगवान को यह भी पता नहीं लगा कि उनका ओतरी ऊपर के कंधे का कपड़ा कब गिर गया है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये श्लोक और आगे के श्लोक में भगवान भक्तों को महिमा देते हैं इसका वर्णन है। भगवान ने यह वचन किया था स्वनिगमम, आपने पहला श्लोक पढ़ा था निगम कलपत्रो गलितम फलम निगम वेद को कहते हैं, तो भगवान के मुख से वेद निकलता है तो भगवान का वचन तो वेद के समान है। उन्होंने कहा था मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्यों ऐसे कहा था? बोला कौरव भी हमारे संबंधी हैं, दुर्योधन की बेटी हमारे बेटे सांबा के साथ विवाह किया हुआ है, वो हमारा संबंधी है, और अर्जुन को मेरी बहन सुभद्रा विवाही हुई है तो ये मेरा बहनो ही है, तो मैं अपना शक्ति बल स्वयं अपना व्यक्तिगत किसी के प्रति नहीं उपयोग में लाऊंगा, अपना अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये उन्होंने वचन किया था। लेकिन भीमसेन ने एक दिन वचन कर लिया कि मैं कृष्ण को जरूर अस्त्र उठाऊंगा, तो भगवान ने भीष्म के वितरण की रक्षा की और रथ से कूदे और रथ का पहिया उठा के भीष्म की ओर शेर की तरह छलांग लगा के झपके। क्यों झपके इसकी कथा कल करेंगे, इसका श्रवण कल करेंगे, आज कथा को यह विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। मेरा फेसबुक चलता नहीं है, कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय।